हेलो कायनातीस, हम ज्यादातर फेमिलियर हैं इस किस्म के मिशंस जैसे आर्टेमिस मिशन है जो चांद का भी एक चक्कर लगा कर भी आया, और फिर फ्यूचर में प्लान्स हैं वहां पर लैंड करने के भी, या फिर मार्स के मिशंस हैं जैसे परसिवियरेंस जो वहां पर जजीरो क्रेटर का चक्कर लगा रहा है, वहां पर जिंदगी के निशाना तलाश कर रहा है, या फिर हम उन नतीजों की बात करते हैं जो हबल स्पेस टेलीस्कोप या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जो नए रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन फिर कुछ और मिशंस भी हैं जो चीन के हैं, जैसा कि चांगे मिशन है जो मुख्तलिफ मिशंस चांद के ऊपर गए, और फिर इसी तरह मार्स के ऊपर एक ज्वारोंग रोवर है जो वहां पर एक इलाका है यूटोपिया प्लेनिशिया वहां पर मौजूद है, और फिर इस साल के आखिर में एक जुंडियन स्पेस टेलीस्कोप वो भी चाइना लॉन्च करेगा। ये है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। स्पेस एक्सप्लोरेशन में थोड़ी सी टेंशन है। बहुत सारे लोग, जिस तरह के मैं हूं और आप लोग हैं, हम सोचते हैं कि जो हमारी एक्साइटमेंट है वो स्पेस में साइंस के सिलसिले में है, और उसका एक लिहाज से जो विजन है वो मुल्कों से बड़ी है, बल्कि वो एक इंसानियत की बात है। बदकिस्मती से जो बहुत सारी जो स्पेस में डेवलपमेंट हुई है, और ख्याल ये है कि खतरा ये है कि इस किस्म की जो और डेवलपमेंट होगी वो मुल्कों के मुकाबलों की वजह से, उनके कंपटीशन की वजह से बनी है, जिसमें मिलिट्री एप्लीकेशन भी शामिल हैं, नेशनैलिटी वगैरह भी, नेशनलिज्म की चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। लेकिन एक लिहाज से जो लोग जैसे मैं हूँ और आप लोग हैं जो चाहते हैं कि स्पेस में पुरअमन यानी कि पीसफुल किस्म की डेवलपमेंट हो, तो हमें इस किस्म के ये जो जिंगोइस्टिक ये नेशनलिस्टिक किस्म की चीज़ें हैं उसको हमें पुश बैक करना भी ज़रूरी है। अब मैं अमेरिका में हूं तो एक लिहाज से मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि अगर यहां पर कोई चीज कोई इस किस्म की पॉलिसी बनती है तो मैं उसको पुश बैक करूं, और फिर आप लोग जहां पर भी हैं वहां पर आप उसको पुश बैक करें अगर कोई बात करता है मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म की खला में, या अगर कोई इस चीज की बात होती है कि सिर्फ मुकाबले की ही बात रह जाए। अब इसी सिलसिले में चीन और अमेरिका के दरमियान एक लिहाज से थोड़ा सा स्पेस में कंपटीशन काफी जोर से चल रहा है। अब बल्कि इस वक्त जो नासा, जिसको जिसकी सारी बहुत सारी डिस्कवरीज की हम अक्सर बात भी करते हैं, जो नासा का हेड है बिल नेल्सन उनका नाम है, वो पुराने एक एस्ट्रोनॉट भी रह चुके हैं। उन्होंने भी एक रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इट इज अ फैक्ट वी आर इन अ स्पेस रेस। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने उसके बाद आगे कुछ और चीजें भी ऐड की, और उन्होंने कहा कि एंड इट इज ट्रू दैट वी बेटर वॉच आउट दैट दे, और ये दे जिसकी बात कर रहे हैं वो चीन की बात कर रहे हैं, कि दैट दे डोंट गेट टू अ प्लेस ऑन द मून अंडर द गाइज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इट इज नॉट बियॉन्ड द रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी दैट दे से कीप आउट वी आर हियर दिस इज आवर टेरिटरी। अब ये जो स्टेटमेंट है वो एक सस्पिशन के तरीके से आता है कि उनको ऑलरेडी वो ये कह रहे हैं कि अगर चीन वहां पर पहुंच गया तो वो हमें कह सकता है कि आप यहां पर ना आए, चांद जो है वो हमारा है, मिसाल के तौर पे। लेकिन मेरे लिए जो इस स्टेटमेंट में जो एक मसला है वो ये है कि ये ऑलरेडी सपोज कर रहे हैं कि चीन जो है वो वहां पर एक ओनरशिप लेना चाहता है चांद की और वहां पर कब्जा कर लेगा। इस किस्म की थिंकिंग में मसला ये होता है कि अगर हमने चीन को अवॉइड करना है, अगर हमने चीन को रोकना है इस चीज से, तो हम उस पर कब्जा उससे पहले कर लें। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इस किस्म की जो थिंकिंग है, इस किस्म के जो ख्यालात हैं, वो किस तरह से स्पेस एक्सप्लोरेशन के, या कम से कम जो हम सोचते हैं सिलसिले में पुरमन स्पेस एक्सप्लोरेशन में, उसके लिए ये नेगेटिव चीज हो सकती है। अब इसमें मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं नहीं पता कि चीन के क्या इस सिलसिले में प्लान्स हैं, लेकिन कम से कम जो उनके स्टेटमेंट्स हैं वो अभी तक यही कहते हैं कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है चीन की वो पुरअमन मकासद या पीसफुल पर्पसेस के लिए है, बल्कि उन्होंने बिल नेल्सन ये जो नासा के हेड है उनके स्टेटमेंट को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। और मेरी वाकई ख्वाहिश है कि इस किस्म की जो कोऑपरेशन है जो स्पेस में कम से कम ये सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान में भी कोल्ड वॉर की हाइट के ऊपर भी कोऑपरेशन थोड़ी बहुत चलती रही थी, शायद अगर हम इस किस्म की कोऑपरेशन कर सकें तो इंसानियत के लिए भी थोड़ी सी उम्मीद की बात होगी। लेकिन ये ज़रा वो बात होती है कि लाइकलीहुड या उसके जो वाकई पीसफुल इस एक्सप्लोरेशन के चांसेस कितने हैं वो थोड़े से कम हैं, लेकिन हमें इस सिलसिले में कोशिश करते रहनी चाहिए। अब ये जो स्पेस रेस की बात हो रही है ये चीन और अमेरिका के सिलसिले में, उसकी दरअसल वजह ये है कि पिछले 30 सालों में चीन ने स्पेस के सेक्टर में बे इंतहा तरक्की की है। बल्कि तकरीबन 30 साल पहले उन्होंने एक गोल बनाया था कि चीन का एक स्पेस स्टेशन होना चाहिए 2020 तक, और वो स्पेस स्टेशन अभी पिछले साल 2022 में वो पूरा कंप्लीट हुआ। लेकिन शुरू में ये जो चाइना का स्पेस प्रोग्राम था उसमें बहुत सारी फेलियर्स भी मौजूद थे, जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर किस्म के स्पेस प्रोग्राम के शुरू होने में। मिसाल के तौर पे उनके बहुत मेजर रॉकेट फेलियर्स थे 91 में, 92 में और फिर 1996 में तो एक बहुत बड़ा सारा डिजास्टर था जो उनका रॉकेट जो है वो मिसफायर हुआ और उसकी वजह से 60 के करीब तकरीबन लोग उनका भी इंतकाल हो गया क्योंकि वो रॉकेट जो है वो वहां पर जाकर गिर गया था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी जो है गलतियों से सीखा भी और फिर कोऑपरेशन, ये देखें ये हमेशा हम कोऑपरेशन की बात करते हैं, कोई भी मुल्क है वो खाली अपने उसके हिसाब से वो चीज़ें नहीं डेवलप कर सकता। तो चीन के सिलसिले में कुछ प्राइवेट कंपनीज जैसे कि बोइंग है जो कि अमरीकी कंपनी है वो चीन के साथ काम कर रही थी, और फिर जो रशियन स्पेस प्रोग्राम है उसके साथ भी चीन ने कोऑपरेट किया, बल्कि जो मेन स्पेस क्राफ्ट है जो चीन की है वो रशियन स्पेस क्राफ्ट सोयूज के मॉडल के ऊपर बनी हुई है। तो अगेन ये एक दोबारा से कोऑपरेशन वाली चीज़ जो है मैं उसके ऊपर ज़रा अहमियत ज़रूर देना चाहता हूँ। लेकिन चीन ने नो डाउट कि पिछले 30 सालों में ज़बरदस्त किस्म की एक तरक्की की है। अब हम ज़्यादातर वाकिफ हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, ये एक कोऑपरेटिव वेंचर है जिसमें अमेरिका यानी कि नासा उसमें एक मेजर पार्टनर है, और इसके अलावा इसमें कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापानी स्पेस एजेंसी और जो रशियन स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, ये उनके एक मिलकर एक कोऑपरेटिव एक वेंचर है स्पेस में। अब चीन ने 2011 के करीब 2011 में कोशिश की थी कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ज्वाइन कर सके एज अ पार्टनर, मगर जो अमेरिका की कांग्रेस है उसने उसको ब्लॉक कर दिया। बल्कि उन्होंने एक एक्ट वहां पर उन्होंने साइन किया कि जिसने नासा को प्रिवेंट किया है कि नासा जो है अब बाय लॉ वो चीन के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता, इसलिए चीन जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा नहीं बना। तो चीन ने अपना स्पेस स्टेशन जिसका नाम है टियांगोंग वो उन्होंने बनाना शुरू किया, और अभी 2022 के आखिर में उसका जो आखिरी मॉड्यूल था वो बना और वो अब स्पेस में काम कर रहा है, और वहां पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं चाइनीज जिनको टाइकोनॉट्स भी कहते हैं वो अब उस स्पेस स्टेशन के अंदर हैं। अब ये जो चाइनीज स्पेस स्टेशन है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छोटा है, ये तकरीबन इसका जो टोटल वजन है वो 100 टन के करीब है, जबकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 450 टन के करीब है। और लेकिन ये एक, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ज्यादातर टेक्नोलॉजी जो है वो 90s की है, तो उस वक्त जरा सारी चीज़ें भी ज़रा थोड़ी बड़ी बड़ी थी, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो है वो काफ़ी छोटी हो गई है, कंप्यूटर्स वगैरह की एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो जो चीन का स्पेस स्टेशन है टियांगोंग वो रिलेटिवली नया है और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, उसमें 3 लोग जो हैं वो आराम से वहां पर रह सकते हैं, और जब एक और क्रू आता है, जब वो ओवरलैप करता है, तो वहां पर 6 लोगों के ठहरने का बंदोबस्त है। ये अब आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं ये टियांगोंग स्पेस स्टेशन की, और वाकई एक किस्म का, एक बड़ा स्लिक किस्म का ये स्पेस स्टेशन नजर आ रहा है। अब इसमें मैं बल्कि एक छोटी सी एक मैं डिटेल को मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि अगर आप इसमें ये नीचे की तरफ बॉटम की तरफ देखें तो वहां पर आपको कुछ फुट होल्ड्स नजर आ रहे हैं। ये इसलिए है कि एस्ट्रोनॉट्स जो हैं, अगर वो अपने पांव उसके अंदर डालें तो एक लिहाज से वो उस स्पेस स्टेशन पर फ्लोट नहीं करेंगे बल्कि वो ग्राउंडेड होंगे। अब एक मेरा ख्याल है कि ये अमरीका ने जो चीन को ब्लॉक किया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, तो चीन ने उसके रिएक्शन के तौर पे एक्सप्लिसिटली ये स्टेटमेंट दिया कि उनका जो स्पेस स्टेशन है वो यूनाइटेड नेशंस के तमाम ममालिक के लिए वो खुला है, बल्कि वेलकमिंग है उस लिहाज से। और ऑलरेडी जो है उनका प्लान ये है कि वहां पर कोई 1000 के करीब जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं वो उन्होंने ऑलरेडी प्लान किए हैं, और 17 ममालिक जो हैं जिसमें केनिया भी शामिल है, रूस भी शामिल है, ममालिक पेरू जैसा भी है, मुझे पता नहीं कि उसमें पाकिस्तान का उसमें शामिल है या नहीं, लेकिन ये इन तमाम ममालिक के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इस स्पेस स्टेशन पर होंगे। अब टियांगोंग स्पेस स्टेशन की एक अहम एडिशन जो है वो एक्सपेक्टेड है दिसंबर 2023 में, यानी कि इस साल के आखिर में, और वो है जुनटियन स्पेस टेलीस्कोप। ये स्पेस टेलीस्कोप जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसके साइज के कॉम्परेबल है, यानी कि उसका जो मिरर है जुनटियन स्पेस टेलीस्कोप का वो तकरीबन 2 मीटर उसका साइज है। जो हबल स्पेस टेलीस्कोप का मिरर था वो 2.4 मीटर था, लेकिन इसका जो कैमरा है वो, क्योंकि ये अब नया कैमरा है, वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, उसकी वो तकरीबन 2.5 गीगापिक्सल उसका कैमरा है, और वो आसमान का ज्यादा हिस्सा हबल स्पेस टेलीस्कोप के मुकाबले में वो एक वक्त पर देख सकता है। इसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। बल्कि इसका जो एक अहम गोल है वो ये है कि वो 42% पूरे आसमान का वो सर्वे कर सके, और ये जो सर्वे है वो विजिबल लाइट में, जो हम ज़्यादातर जो हम फेमिलियर हैं, और ये जो इसको ऑप्टिकल लाइट भी कहते हैं, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप ज़्यादा उस पर काम करती थी, तो वो इन वेवलेंथ्स में और अल्ट्रावायलेट में, और ये जो अल्ट्रावायलेट में इस किस्म का सर्वे ये पहली दफ़ा है जो कोई टेलीस्कोप कर पाएगी इतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन के साथ। अब ये जुनटियन स्पेस टेलीस्कोप जो है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्राइमरली इंफ्रारेड में काम करेगी। तो इंफ्रारेड और फिर विजिबल और फिर जुनटियन का जो एक यूनिक वो कैपेबिलिटी होगी अल्ट्रावायलेट में, उस हिसाब से ये चीज एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बहुत ज्यादा कारामद होगी। लेकिन चीन के स्पेस प्रोग्राम के सिलसिले में जो चांद के ऊपर प्रोग्राम है, मेरा ख्याल है वो एक स्पेशल मेंशन रखते हैं, और इसमें मैं कहूंगा कि जो खास बात है वो चीन की एक सिस्टमैटिक अप्रोच थी। उसके ये चांगा मिशंस उनके नाम हैं, ये जो चांद के ऊपर गए, और उसमें जो पहला उनका ऑर्बिटर था चांगा 1 वो 2007 में था, लेकिन उसके बाद खासतौर से कुछ और जो स्पेसिफिक मिशंस थे, चांगा 3 ये दिसंबर 2013 में वहां पर गया, ये एक रोवर था, लेकिन 2019 में ये चीन ने चांगा 4 मिशन भेजा, जो कि जो चांद की फार साइड है, उसको हम डार्क साइड नहीं कहते, वो फार साइड है, क्योंकि वो जमीन को हमें नजर नहीं आती, वो जमीन के दूसरी तरफ पे, यानी कि चांद क्योंकि वो उसकी रोटेशन जमीन के हिसाब से लॉक्ड है, तो उसकी जो फार साइड है वहां पर चांगा 4 मिशन जो है उसने वहां पर लैंड किया, और ये पहली दफा था कि किसी मुल्क का रोवर जो है वो वहां पर फार साइड के ऊपर लॉन्च किया, क्योंकि वो हमें डायरेक्टली नजर नहीं आता। उसकी मुश्किल चैलेंजिंग चीज ये है कि आपको उसके लिए एक रिले सैटेलाइट चाहिए जो उसको कोऑर्डिनेट कर सके उसकी वहां पर लैंडिंग, और इसके अलावा जो उसकी फंक्शनिंग वगैरह है। तो चीन जो है वो पहला मुल्क बना 2019 में चांगा 4 के साथ जो चांद की फार साइड के ऊपर उसने वहां पर लैंड किया, और फिर अभी रिसेंटली चांगा 5 जो है, यानी कि जो इस सीरीज का पांचवां मिशन था, वो ना सिर्फ चांद के ऊपर उसने लैंड किया बल्कि वो वहां से सैंपल्स भी चांद से लेके आया, और ये पहले चांद के सैंपल्स हैं 1972 के बाद से, यानी कि 50 साल तक हमारे पास कोई वहां से सैंपल्स नहीं आए थे। वो अपोलो मिशन के सैंपल्स थे जो मौजूद थे, लेकिन फिर ये चंग 5 जो है वो पहली दफा चांद से सैंपल्स लेकर आया। और जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, जिस तरह से साइंस काम करती है कि इसने और चीजें दरियाफ्त की, बल्कि ये कुछ लोग कहते हैं कि चांद पर तो पहले कोई गया ही नहीं, ऐसी बात नहीं। तो जिस तरह चीन का जो मिशन है वो उन जगहों से सैंपल लेके आया, या उस जगह से सैंपल लेके आया जहां पर अपोलो मिशंस नहीं गए थे। तो चंगा 5 जो है वो एक लावा फील्ड जो अपोलो की लैंडिंग साइट्स के मुकाबले में रिलेटिवली यंग थी, इस जगह का नाम है ओशियनस प्रोसेलेरम। ये वहां पर लैंड किया और उसने ये पता लगाया कि ये जो लावा है ये 2 अरब साल पहले या 2 बिलियन साल पहले जो है वो वहां पर चांद पर वो फ्लो किया था, जो कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि जो सैंपल्स अपोलो से आए थे उसमें ख्याल ये था कि ये जो ज्यादातर लावा फ्लो हैं वो 3 अरब साल पुराने थे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से साइंस जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। बल्कि ये जो चंग 5 के जो सैंपल हैं उसमें उन्होंने एक क्रिस्टल भी उनको दरियाफ्त किया उन्होंने, जो वहां पर पहले मालूम नहीं था कि इस किस्म का मिनरल है। ये एक फॉस्फेट मिनरल है, इसका अब ऑफिशियल नाम जो है वो चंगासाइट है, और इसका जो सिंबल है वो वाई है, कैपिटल वाई। तो आप ये देख सकते हैं कि मुल्कों की पॉलिसीज एक दूसरे से एग्री करें या ना करें, लेकिन जो साइंस है, जो साइंस की एक्सचेंज है, वो फिर भी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अब चीन के जो अगले कुछ मिशंस हैं चांद के सिलसिले में, वो चांद के साउथ पोल की तरफ है, और उसके सिलसिले में काफी इंटरेस्ट है क्योंकि जो नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम है उसका भी इंटरेस्ट चांद के साउथ पोल की तरफ है। इसकी वजह यह है कि कुछ साल पहले एक इंडियन एक ऑर्बिटर था चांद का, जिसने दरियाफ्त किया कि चांद के साउथ पोल के ऊपर बर्फ, पानी वाली बर्फ जो है वो मौजूद है। ये जो चांद के क्रेटर्स हैं वहां पर, वो कुछ ऐसी जगह हैं जो हमेशा एक लिहाज से साए में रहती हैं और सूरज की रोशनी उन पर नहीं पहुंचती, तो इस वजह से ये बहुत अहम जगह है साउथ पोल। तो चीन का एक मिशन जो चंग 7 है वो वहां पर जाएगा, और वो रोवर भी है, ऑर्बिटर भी है, और ख्याल ये है कि वहां पर एक फ्लाइंग, एक छोटा सा सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो ऑर्बिटर भी वहां पर सरफेस के करीब होगा। और फिर चंग 6 जो है वो बल्कि इस बर्फ को सैंपल जो है वो जमीन के ऊपर लेकर आएगा। इसका जो एक फायदा है वो ये है कि वो हमें ये भी बता सकेगा कि चांद की तारीख कैसे है, वो कैसे बना और उसकी अर्ली हिस्ट्री कैसी है। लेकिन इसके अलावा ये भी चीज कि अगर वहां पर उसको इस्तेमाल करना हुआ वहां पर लूनर बेस पे, या अगर उसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करना हुआ, तो क्या हम वहां पर कर सकते हैं या नहीं। और फिर इवेंचुअली चंग 8 वो ख्याल ये है कि वो 2030 तक वहां पर जाएगा और वो चेकआउट करेगा 3D टेक्नोलॉजी, वहां का जो मटेरियल है उससे वहां पर चीजों को बनाने के लिए। तो चांद का जो चीन का प्रोग्राम है वो काफी एम्बिशियस है। और फिर है मार्स या मरीख। अब आपको परसिवियरेंस रोवर का तो पता होगा, मैंने भी इस सिलसिले में यहां पर वीडियोस बनाई, लेकिन जब परसिवियरेंस वहां पर पहुंचा मार्स के ऊपर, उसी महीने चीन का भी एक ऑर्बिटर जिसके साथ एक रोवर भी था वो वहीं पर उस वक्त पहुंचा था, और उसका ऑर्बिटर जिसका नाम है TN-11 वो भी वहां पर ऑर्बिट कर रहा है, और जो उसका रोवर है जोरोंग के नाम से वो मार्स पर पहुंचा। अब इस वक्त ये आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं, ये एक उस वहां पर उसका कैमरे ने एक लिहाज से उसकी सेल्फी ली। ये रोवर जो है वो थोड़ा सा दूर होता गया उस कैमरे से। इस यहां पर ये जो रोवर है उसने मार्स की साउंड्स भी रिकॉर्ड की कि मार्स पर जैसे वो मूव कर रहा है, और वो कुछ महीनों तक काम करता रहा। इसने जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की डिस्कवरीज की। ये परसिवियरेंस के इलाके में नहीं था बल्कि एक और मार्स का इलाका है जिसका नाम है यूटोपिया प्लेनिशिया। ये वहां पर है जहां पर वाइकिंग लैंडर्स 1970s में लैंड किए थे। लेकिन ये जो जूरोंग रोवर है इसमें एक खास चीज यह है कि रेडार मैपर भी मौजूद है, यानी कि वो मार्स की सतह के नीचे थोड़ा सा मैप आउट कर सकता है कि वहां पर क्या है, किस चीजें, किस तरह की चीजें बनी हुई हैं। तो उसने दरियाफ्त ये किया, ये अभी रिसेंटली ही ये स्टडी पब्लिश हुई है, कि गालिबन इस इलाके में, यूटोपिया प्लेनिशिया के इलाके में बहुत बड़ा सारा फ्लड था तकरीबन 1.5 अरब या 1.6 बिलियन साल पहले, और उससे पहले 3 अरब साल पहले एक और बड़ा सारा फ्लड, वहां पर फ्लडिंग हुई थी। तो एक लिहाज से ये बड़ी डिस्कवरी है जो ज़ूरोंग रोवर ने की। लेकिन मैं दोबारा से मैं थोड़ा सा एक रिमाइंडर कर दूं कि जैसा मैंने कहा कि ये दूसरे इलाके में है, परसिवियरेंस दूसरे इलाके में है मार्स के, कि ये तमाम साइंस की चीजें जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि जो चीन के रोवर्स दरियाफ्त कर रहे हैं वो हेल्प करते हैं नासा की साइंस को, और जो नासा की साइंस है वो हेल्प करती है चीन की साइंस को, और एक तरह से वो आइडियल चीज होती है इंसानियत को मुख्तलिफ चीजों के बारे में सीखने और समझने के लिए। और ये बाय द वे ये Tianwen-1 जो है वो अभी भी ऑर्बिट कर रहा है, और ये आप हाई रेजोल्यूशन अब मार्स की तस्वीरें उसके हिसाब से देख रहे हैं। अब जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि खाली यही प्रोग्राम्स नहीं बल्कि चीन के प्रोग्राम्स जो हैं वो अब जरा डीप स्पेस के सिलसिले में भी हैं। इसमें से एक जो है वो 2029 या 2029 में ख्याल ये है कि एक जुपिटर के गिर्द एक ऑर्बिटर, जिसका ज्यादा फोकस जो है वह जुपिटर का चांद कैलिस्टो, वो उसकी तरफ होगा। तो देखते हैं कि वो कैसे आगे जाके चलता है। और फिर इसके अलावा एक और मिशन है जो कि स्पेस में ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने का है। ये भी बहुत एम्बिशियस प्लान है, और अगर वो कामयाब हुआ तो वो भी एक फंडामेंटली वो चेंज कर देगा जिस तरह से हम ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में सोचते हैं। अब बहुत सारे ये जो प्लान्स हैं वो चीन के एक वाइट पेपर में लिस्टेड हैं जो पिछले साल आया। चीन हर 5 साल के बाद अपना एक लिहाज से फ्रेमवर्क बताता है कि उनका अगले 5 साल में क्या प्लान है। इस ये जो लास्ट वाला जो वाइट पेपर था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप भी उसको चेक कर सकते हैं। इसमें उसमें पाकिस्तान की भी उसमें कुछ कोऑपरेशन का जिक्र है, वैसे डीप स्पेस वगैरह के सिलसिले में तो नहीं, लेकिन लोकल कोऑपरेशन का उसमें थोड़ा बहुत जिक्र मौजूद है। लेकिन अल्टीमेटली मैं फिर उसी के ऊपर आऊंगा कि एक लिहाज से जो मुझे एक वरी है, जो एक फिक्र है, वो इस सिलसिले में है कि जो चांद के ऊपर चीन के मिशन जाएंगे तो चीन के साथ जो अलाइंड कंट्रीज हैं, और फिर आर्टेमिस जो अमेरिका का मिशन है उनके साथ उनकी जो अलाइंड कंट्रीज हैं, ये वहां पर जाकर उनका कैसा इंटरेक्शन होगा। अब मुझे उम्मीद है, या बल्कि मुझे कहना ये चाहिए, मेरी ख्वाहिश है कि हम यानी कि इंसान स्पेस में जाकर थोड़ा बेहतर बिहेव करें कंपेयर्ड के जिस तरह से हमने जंगें की हैं ज़मीन के ऊपर, या जिस किस्म की हमारी कंपटीशन रही है ज़मीन के ऊपर। लेकिन ये सिर्फ मुस्तकबिल बताएगा कि इंसान स्पेस में जाकर किस तरह से रहेंगे।